Nama Budhaj. Jai Bhim. So we'll proceed with our exploration of the Bodhisattva.
तो हमारी जो बोधिसत्व की खोज चल रही थी उसी के साथ हम और आगे जाएंगे.
And after this session, there's going to be a period for you to discuss both these talks.
तो इस सत्र के बाद आपको कुछ अंतराल मिलेगा, कुछ समय मिलेगा, जहाँ पर आप इन दोनों प्रवचनों के विषय में कुछ चर्चा कर पाएंगे.
And I'm really interested to know what comes out of your discussion and anything that you would like me to explore further.
तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी चर्चा में से क्या निकल कर आता है और ऐसा कुछ है क्या कि जो मुझसे आप और अधिक जानना चाहते हैं.
Because I'm experimenting a bit, I'm exploring a bit experimentally.
तो क्योंकि मैं भी एक प्रयोग कर रहा हूँ और प्रयोग करते करते ही मैं खोज भी कर रहा हूँ.
So I'm afraid that means you're my laboratory rats.
तो इसका मतलब होता है कि आप वो मेरे जो प्रयोगशाला होते हैं उसमें प्रयोग करने वाले वो चूहे हो.
Nobody laughed. Was you supposed to laugh at that? So we were saying that we know what kind of new society we want.
तो हम ये देख रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि किस प्रकार का वो नया समाज है जो हम चाहते हैं.
And we saw that really the only effective way to bring about such a society is by a change in the mentality of many, many citizens.
और फिर हमने ये भी देखा कि इस प्रकार का अगर समाज हमको निर्माण करना है तो उसका परिणाम कारक एक ही रास्ता है कि उसके बहुत सारे नागरिकों का जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन लाया जाए.
So then we were exploring what kind of change is needed.
और फिर उसके बाद हम इस और देख रहे थे कि फिर वो परिवर्तन किस प्रकार का है जिसकी हमें आवश्यकता है.
Or rather, what is the kind of mind that we're hoping will be produced by that change?
या फिर हम ये देख रहे थे कि उस प्रकार के बदलाव से किस प्रकार का वो मन होगा जो हम निर्माण करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं.
And we were using the figure of Baba Sahib as a way into that kind of mind.
और हम बाबा साहब के उदाहरण के बाबा साहब का उदाहरण देखते हुए देख रहे थे कि वो मन किस प्रकार का होता है.
And I was especially exploring the fact that Baba Sahib is referred to as Bodhisattva.
और मैं खास करके इस बात को भी कह रहा था कि बाबा साहब को हम बोधिसत्व कर संबोधित करते हैं.
And as I said, this is a very important term in the Buddhist tradition.
और जैसे कि मैंने कहा कि बौद्ध परंपरा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा शब्द है.
And therefore we have a rich field of teaching to draw on.
और इसलिए इस संदर्भ में अगर हमें कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे पास शिक्षाओं का एक बहुत विशाल ऐसा भंडार है.
And it's important for us to realize that you could probably say the great majority of Buddhists in the world understand that the Buddhist life is lived to be a bodhisattva.
और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि बहुत सारा जो बौद्ध संप्रदाय है पूरे विश्व में तो वो इस बात को समझते हैं कि बौद्ध जीवन जो है वो बोधिसत्व बनने के लिए ही जिया जाता है.
Those Buddhists who identify themselves as Mahayana, for instance the Tibetans, the Chinese, Japanese, etc., that is what they're trying to do. They're trying to become bodhisattvas.
तो वो बौद्ध परंपराएं जो अपने आप को महायानी परंपराएं कहती है, जैसे तिब्बतियन है, चाइनीज परंपरा है, तो वो जो है यही करने की कोशिश कर रहे हैं. वो बोधिसत्व बनना चाह रहे हैं, उनकी आकांक्षा है.
And the essential point of a bodhisattva is that such a person is living their lives not just for their own sakes.
और इसका महत्व इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जो बोधिसत्व बनने की चाह रख रहा है वो अपना जीवन सिर्फ अपने लिए व्यतीत नहीं कर रहा है.
They're concerned with the ultimate happiness in the end of everybody.
और ऐसा व्यक्ति जो है अंत में सभी के लिए जो परम सुख है, सर्वोच्च सुख है, उसकी कामना करता है.
And we see very clearly how Baba Sahib can therefore be called a bodhisattva.
और फिर हमने बहुत ही अच्छे से इस बात की और भी देखा कि किस प्रकार से फिर हम बाबा साहब को बोधिसत्व कह सकते हैं.
But what we need to do now is try to peer a little bit more deeply into this mind of the bodhisattva.
लेकिन अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि अभी हम इस बोधिसत्व के बोधिसत्व वाला जो मन है, बोधिसत्व मन जो है उसके भीतर और गहराई से प्रवेश करना चाह रहे हैं.
And so often it's easier to understand what something is if you understand what it isn't.
और अक्सर अगर किसी चीज को जानना है कि वो क्या है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ये जाने कि वो क्या नहीं है.
So the bodhisattva's mind is radically different from the mind that most people have.
तो बोधिसत्व का मन जो है वो बहुत ही अलग तरह का मन होता है, अगर आप उसकी तुलना आम तौर पे जो व्यक्ति का मन होता है उससे करें तो.
In what way?
तो फिर किस तरह से?
What is the basic difference between the mind of a bodhisattva and the mind that we generally find ourselves having?
तो फिर आमतौर पे हमारे पास जो मन होता है और बोधिसत्व का जो मन होता है उसमें क्या अंतर होता है?
Most people's minds are focused upon or driven by I.
तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके मन या तो मैं पर केंद्रित होते हैं या उनके मन को चालना देने के लिए मैं ही कारण होता है.
Everything people do in the end comes back to me.
तो जो भी लोग करते हैं अंतिमता फिर वो उसके मैं तक ही आ जाता है.
Of course, some people act very well.
निश्चित ही बहुत लोग जो है बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं.
But still at the back of it is I.
लेकिन फिर भी उन सब के पीछे कहीं ना कहीं मैं होता है.
So it's as if all the time, everything we do, everything we think, everything we see in a way, comes back to I.
तो एक तरह से वो हर चीज जो हम करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, वो अंत में मैं तक ही आ जाती है.
This isn't, I'm not saying this is wrong.
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है.
We mustn't feel it sort of bad. To be I, have an I.
हमने ऐसा भी महसूस नहीं करना चाहिए कि ये जो मैं है, ये मैं होना जो है वो बहुत बुरी बात है.
It's perfectly normal. It's actually in evolutionary terms an advance.
तो ये बहुत ही सामान्य है मैं का होना, और अगर आप उत्क्रांति के संदर्भ में देखा जाए तो ये मैं जो है आपकी उत्क्रांति का अगला स्तर होता है.
The point that the whole Buddhist tradition, even the earliest tradition, makes is attachment to that I creates suffering.
लेकिन बौद्ध परंपरा जिस बात को जोर देकर कहती है, या सारी बौद्ध परंपरा, वो ये कहती है कि इस मैं के साथ आसक्त होना या इस मैं के साथ बहुत लगाव रखना ही अंत में दुख का निर्माण करता है.
Of course it creates suffering for you in the end.
और निश्चित ही अंत में आप ही के लिए दुख निर्माण करता है.
And it creates suffering for others.
और वो औरों के लिए भी दुख निर्माण करता है.
That's the point. It's not that it's wrong or bad. It's the point is that it's inefficient.
तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरी बात है, लेकिन ऐसे बात है कि ये उतना परिणामकारक नहीं है इसका होना.
The point is it's not in accordance with the way things really are.
और मुद्दा ये है कि चीजें वास्तव में जैसी होती है ये बात जो है उसके अनुकूल नहीं है.
Now maybe this is a bit difficult to get hold of.
तो हो सकता है कि इसे समझना थोड़ा सा कठिन हो.
I'm not surprised because it's so fundamental to the way we see things.
मुझे इससे आश्चर्य भी नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से हम चीजों को देखते हैं उसकी बुनियाद में ही ये बात है.
But in order to explain it, I need to be a little bit technical.
लेकिन आपको मैं इसको समझा कर बताऊं इसके लिए मुझे थोड़ा सा तांत्रिक होना पड़ेगा, मतलब तंत्र की भाषा का इस्तेमाल करना.
I need to go into a little bit of Buddhist psychology.
तो जो बौद्ध मनोविज्ञान है उसका मुझे थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा.
So fasten your seat belt.
तो आप अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लें.
Put on your crash helmet.
और अपने हेलमेट पहन लें अगर कुछ होने वाला.
Don't worry, you'll be fine.
और चिंता मत कीजिए, आप सब लोग ठीक से.
Even that's a little technical, it's actually quite to do with our experience.
तो भले ही ये बातें थोड़ी सी तंत्र ज्ञान की है लेकिन हमारे उपयोग की.
So first of all we need to think about what this I is, what this sense of I is.
तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मैं क्या होता है या इस मैं की अनुभूति किस प्रकार की होती है.
So we're all sitting, you're looking at me mainly.
तो हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप मुख्य रूप से मेरी ओर देख रहे हैं.
I'm looking out at you.
और मैं आपकी ओर देख रहा हूँ.
I don't know what Marty's doing. So we're each of us based in our own bodies, of course.
तो निश्चित ही हम सभी जो है इस वक्त अपने ही शरीर के अंदर स्थिर हैं, स्थापित हैं.
We're looking through our own eyes.
और हम अपने ही आंखों के माध्यम से, अपने ही आंखों के द्वारा देख रहे हैं.
But when we look, when we see something out there, and we think there's something in here.
लेकिन जब हम देखते हैं, तब हम देखते हैं कि कोई चीज वहाँ बाहर है और कोई चीज यहाँ पर अंदर है, मतलब इस और है और उस और है.
We think there's a world out there.
हम सोचते हैं कि वहाँ बाहर एक दुनिया है.
I am in here looking at the world.
और मैं यहाँ पर, यहाँ अंदर हूँ और मैं बाहर की दुनिया को देख रहा हूँ.
It just seems obvious, doesn't it?
और ये हमें बहुत ही स्पष्ट लगता है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं होता है.
I am looking at you. That's the way we say it.
और हम इसी तरह से इस बात के विषय में बात करते हैं कि मैं आपकी ओर देख रहा हूँ.
We think that I am in some way behind my experience.
और एक तरह से हम सोचते हैं कि एक प्रकार से मैं मेरे अनुभवों के पीछे खड़ा हूँ.
And although we don't probably often think about it, actually we reckon that I is permanent.
और अक्सर हम इस बात को उस तरह से देखते नहीं है, लेकिन अक्सर हम इस बात को स्वीकृत कर लेते हैं कि ये जो मैं होता है ये नित्य होता है, ना बदलने वाला होता है.
And we think of it as separate.
और हम ऐसा सोचते हैं कि ये अलग है, स्वतंत्र है इसका अस्तित्व.
And we are very strongly attached to it.
और हम बहुत ही सशक्त रूप से उस मैं के साथ आसक्त होते हैं, उससे चिपके हुए होते हैं.
Of course, that sense of an I is partly to do with the way our senses function.
और ये जो मैं की अनुभूति होती है, उसका कुछ ना कुछ संबंध हमारे उन सारी इंद्रियों के मतलब कार्य करने के पद्धति के साथ जुड़ा हुआ होता है कि वो किस तरह से कार्य करती है.
Because I'm looking at you from here.
क्योंकि मैं यहाँ से आपकी ओर देख रहा हूँ.
But actually, it's really a thought, this I.
लेकिन वास्तव में ये केवल एक विचार ही होता है कि मैं ऐसा कुछ होता है.
And it's quite complex.
ये बहुत जटिल है.
It's built up of social experience.
हमारे जो भी सामाजिक अनुभव होते हैं, उस अनुभव पर ये आधारित होता है.
It's built up of whatever we're taught in our culture.
हमारी संस्कृति में हमें जो कुछ भी सिखाया जाता है उस पर ये आधारित होता है, उस पर ये बढ़ते रहता है, बनता है.
So let's just take a simple example.
तो एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेते हैं.
I am looking at you.
तो मैं आपकी ओर देख रहा हूँ.
An Englishman is looking at a bunch of Indians.
तो एक अंग्रेज जो है कुछ भारतीयों की ओर देख रहा है.
I am English.
मैं अंग्रेज हूँ.
When England plays India at cricket, I cry.
और जब इंग्लैंड जो है भारत के विरुद्ध क्रिकेट का मैच खेलता है, हारता है, तो मैं रोता हूँ.
Because usually England doesn't win.
क्योंकि आमतौर पे जो इंग्लैंड है वो जीतता नहीं है.
Chandrashil is saying they never win. Although I remember one study group we were doing together, and Chandrashil was listening to the cricket all the time, and I thought I would listen too. And one day I noticed he didn't say anything about the score because England had won.
Samjhana.
Not worth translating. But you get my point. Being English is part of my identity.
लेकिन आप इसमें जो मुद्दा छुपा है वो देख सकते हैं कि अंग्रेज होना ये मेरी पहचान का एक हिस्सा है.
Actually, it's when you look at it, it's much more complex than that.
तो जब आप इसकी ओर देखते हैं तो ये इससे भी और ज्यादा जटिल है.
My father was from a Scottish family.
तो मेरे पिता जो है वो एक स्कॉटिश परिवार से ताल्लुक रखते थे.
My mother was from New Zealand of Irish and Norwegian extraction.
और मेरी माँ जो है वो न्यूजीलैंड की थी और वो आयरिश और
न्यूजीलैंड
और न्यूजीलैंड
नॉर्वेजियन
परिवार से मतलब ताल्लुक रखती थी मतलब उसके माता पिता उन परिवारों से
So in what sense am I English?
तो फिर किस तरह से मैं अंग्रेज हुआ
And anyway, what is it to be English?
Yeah? और अंग्रेज होना मतलब भी क्या होता है
And, Yes, if you think about what it is to be English, it's basically the end of your passport.
तो अगर किसी तरह से कहा भी जा सकता है कि आप अंग्रेज हो तो बस आपके पासपोर्ट के आधार पर.
In certain respects, I'm more at home in India than I am in England.
और कुछ कुछ बातों के संदर्भ में तो मुझे भारत अपने मतलब बहुत ही निकट परिवार की तरह लगता है. इंग्लैंड नहीं लगता मुझे अपने घर जैसा.
It's always very strange when I'm in India. And some of my English friends come.
कभी-कभी बहुत विचित्र ऐसा होता है कि मैं जब भारत में होता हूँ और मेरे अंग्रेज दोस्त आते हैं.
Is that strange white man over there?
और कहते हैं कि कितना विचित्र अजीब मतलब ये सफेद आदमी अंग्रेज आदमी है यहाँ.
I've sort of become Indian, you see, in my own mind.
एक प्रकार से मैं अपने मन में जो है वो भारतीय बन चुका हूँ.
You know, I'm sort of identified because that's my experience, yeah.
तो एक तरह से मतलब मुझे पहचाना जाता है क्योंकि वो मेरा अनुभव होता है
स्ट्रेंज भूत
तो जैसे मैं कोई एक विचित्र ऐसा भूत हूँ
सो वी कंस्ट्रक्ट आवर आइडेंटिटी आवर सेंस ऑफ आई अराउंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कल्चरल एंड इवन रिलीजियस एंड सो ऑन फैक्टर्स
तो बहुत सारे सांस्कृतिक धार्मिक और बहुत सारे अन्य जो तत्व होते हैं उनके आधार पर मैं हम जो है हमारे मैं का निर्माण करते रहते हैं
फॉर इंस्टेंस योर फैमिली यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ वेरी स्ट्रांगली विद योर फैमिली
तो उदाहरण के तौर पे आपका परिवार आप बहुत ही सशक्त रूप से अपने परिवार को अपनी पहचान मानते हैं
कंप्लीटली नेचुरल
और ये बहुत ही स्वाभाविक है
एंड देन यू थिंक ऑफ योरसेल्फ एज इन टर्म्स ऑफ दैट Identity.
और फिर उसी पहचान के संदर्भ में आप अपने विषय में सोचने लगते हो
It's interesting. Apparently, it's quite common for small children to think that they don't actually belong in the family that they're living in.
और बहुत सारे बच्चों के संदर्भ में तो ऐसे होता है बहुत आम बात है वो ऐसे समझते हैं कि मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ ही नहीं जिसमें मैं रहता हूँ
I didn't have this experience myself, but I know a number of friends who've said that they sort of wondered where their parents found them
aur mera apna to aisa koi anubhav nahi raha hai lekin mere kafi logon se baat hoti hai aur wo is tarah se apna anubhav batate hai ki wo aashcharya vyakt karte hai ki unhe aisa lagta hai ki pata nahi mere maa baap mujhe kahan se dhoond kar leke aaye
I don't know how common that is in India or any of you have experienced that
to mujhe nahi pata ki ye bharat mein kis tarah se paristhiti hai ya aapko aisa anubhav aaya hai ya nahi
the point is really that actually Yeah, you don't belong in that family.
यहाँ पे देखने वाला मुद्दा ये है मुख्य तौर से कि वाकई में आप उसी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते उस परिवार से आपका संबंध नहीं होता
That doesn't define you, that doesn't limit you.
वो बात आपकी व्याख्या नहीं करती है या वो बात आपको सीमित नहीं करती है
I'm not at all saying you shouldn't have very positive feelings of gratitude and connection and service within your family.
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आपको हमेशा बहुत ही सकारात्मक ही भावना होनी चाहिए संबंधी होनी चाहिए कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए अपने परिवार के प्रति
I'm just saying that a lot of your idea about yourself is formed out of your experience and has no real basis in reality.
तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके स्वयं के मैं के विषय में जो भी धारणाएं होती है वो बहुत सारी जो है आपके अनुभवों से निर्माण होती है और सच्चाई के साथ उसका ताल्लुक नहीं होता
You know that in Britain we don't have a caste system well except for the one that the Indians bring with them
उदाहरण के तौर पे आपको पता है कि ब्रिटेन में हमारे पास कोई जाति व्यवस्था नहीं है उस व्यवस्था के अलावा जो भारतीय लोग अपने साथ लेकर वहाँ पर आ जाते हैं
So if I want to find a Gujarati Patel bride, there will be a column somewhere where I can find one.
तो अगर मुझे गुजराती पटेल परिवार की अगर कोई दुल्हन चाहिए तो वहाँ पर पेपर में जो है उसका अलग से हिस्सा होता है
But that's not part of the culture from which I come.
लेकिन जिस संस्कृति से मैं आता हूँ उसका उससे कोई उस प्रकार के विज्ञापन से कोई संबंध नहीं होता है, वो बाहर से आया हुआ है.
But we do have a class system.
लेकिन वर्ग व्यवस्था जो है वो हमारे यहाँ पर भी है.
And by and large, it's not so strong at all these days. But by and large, people used to identify quite strongly with their class.
और आजकल वो उतनी प्रचलित नहीं है, लेकिन एक दौर था जब लोग जो है अपने वर्ग से अपनी पहचान को जोड़ते थे.
And just as Indians have caste radar, English people have class radar.
और वैसे ही जैसे भारतीयों के पास जाति को पहचानने वाला वो रडार होता है, वैसे ही हम अंग्रेजों के पास कि कौन व्यक्ति किस वर्ग का है वो देखने का रडार होता है.
When Mokshapriya met me, he would have known immediately where I came from.
जब मोक्षप्रिय की मुझे मेरे साथ मुलाकात होती थी तो उन्हें तुरंत ही ये पता चल जाता था कि मैं किस वर्ग से संबंध रखता हूँ.
By the way I speak, by the words I use, even my manner.
तो जिस प्रकार से मैं बात करता हूँ, जिन शब्दों का मैं उपयोग करता हूँ, या जो भी मेरी आचार की पद्धतियाँ होती है उससे.
But of course what happens is that I myself identify with my class.
लेकिन होता क्या है कि मैं भी अपनी पहचान को अपने वर्ग के साथ जोड़ता हूँ.
So we live inside all these identities which form our sense of self.
तो हम इस प्रकार के अपनी पहचानों के भीतर जीते हैं जो हमारे मैं का निर्माण करती है.
And there's something deeper about the sense of self that doesn't quite form into those categories.
और इस मैं के विषय में बहुत गहराई में ऐसा होता है कि जो किसी भी प्रकार से इन वर्गों के अंतर्गत नहीं आता.
It's just the strong sense that there is in me a permanent I.
और वो इस तरह से होता है कि हम ऐसा समझते हैं कि मेरे भीतर कहीं एक कभी ना बदलने वाला नित्य ऐसा मैं है.
I hope this isn't too heavy. I hope you're getting something of what I'm saying.
मुझे उम्मीद है कि बहुत भारी नहीं हो रहा है आपके लिए और आप कुछ हद तक समझ पा रहे हो इससे.
And you can see that already from what I said that this strong sense of a separate identity is the source of so much problem.
और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो हमारा मतलब ये अनुभूति होती है कि एक स्वतंत्र और ऐसा अलग ना बदलने वाला स्व है, वो बहुत सारे दुखों का कारण होता है.
When we feel that I, that inner sense of I, is threatened, then we punch out, we lash out.
और जब हम ये महसूस करते हैं कि मेरे भीतर का वो जो मैं है उसको किसी प्रकार का खतरा है, तो हम बहुत ही तीव्रता से जो है प्रतिक्रिया करते हैं.
We dismiss whatever threatens us.
और जो भी चीज है जो मेरे आय को डराती है उसको हम नकार देते हैं.
We label it enemy.
और उस चीज को हम शत्रु का नाम दे देते हैं.
And we feel hatred towards it.
और हम उसके प्रति फिर नफरत महसूस करते हैं, द्वेष महसूस करते हैं.
So these feelings of dislike, of enmity come from our attachment to I.
तो ये जो किसी चीज को नापसंद करने का या शत्रुत्वता की जो भावना होती है, ये निर्माण होती है मेरे मैं के एहसास से, मैं के होने के एहसास से.
Of course, the same happens the other way around with things that are pleasant.
और जो चीजें अच्छी लगती है हमें उसके साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन दूसरी तरह से.
So that you know, you see something that you think will bring you pleasure, you want it.
आप ऐसी किसी चीज को देखते हैं जो आपको पता होता है कि ये आपके लिए आनंद लेकर आने वाली है, तो आप उस चीज की चाह करते हैं, कामना करते हैं, आपको चाहिए होती है.
You want to enjoy it.
आप उसका आनंद लेना चाहते हैं.
Because everybody wants to be enjoy pleasure.
क्योंकि हर कोई जो है आनंद का अनुभव करना चाहता है.
And you want to include it in your identity.
और आप जो है उसे अपनी पहचान के अंतर्गत शामिल करना चाहते हैं, अपनी पहचान में उसे सम्मिलित करना चाहते हैं.
You want to make it part of yourself so that you can continuously enjoy it.
और आप उसे अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं ताकि आप निरंतर उसका आनंद ले सके.
That's craving.
और ये तृष्णा होती है.
Craving, which is this fixation on a pleasurable object and an attempt to make it part of you.
तो तृष्णा इस प्रकार से कि आप किसी चीज के ऊपर अपना ध्यान लगा लेते हैं, उसकी चाह करते हैं और आप उस चीज को अपना हिस्सा बना लेना चाहते हैं.
Well, I don't have to spell it out, do I? That this hatred leads to all the conflict in the world.
और ये मुझे बोलकर दिखाने की भी जरूरत नहीं कि ये जो नफरत है ये दुनिया के हर प्रकार के संघर्ष को जन्म देता है.
If you look at the news every day, some new war, some new violence or whatever.
अगर आप जो है अखबारों में देखते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं, तो हर प्रकार के नई हिंसात्मक खबरों से उसे भरा हुआ पाते हैं.
And that always comes from the idea that if I can get rid of that, if I can get rid of them, then I'm safe. My identity is secure.
तो ये इस प्रकार के विचार से आता है कि अगर मैं इससे इनसे मुक्ति पालू, इनसे छुटकारा पालू, तो मेरा जो मैं का एहसास है वो सुरक्षित हो जाएगा, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा.
Yes, you try to eliminate whatever threatens you.
और जो भी चीज आपको डराती है उस चीज को आप नष्ट कर देना चाहते हैं.
But of course you also want to get whatever you think will make you more happy and secure.
लेकिन आप उस चीज को भी पाना चाहते हैं जो आप सोचते हैं कि आपको अधिक आनंद देगी या खुश करेगी.
And if somebody else has it, you're going to take it from them.
और अगर वो चीज किसी और के पास होती है तो आप उनसे वो चीज छीन लेना चाहते हैं.
And broadly you could say that all the problems, all the evil, all the injustice comes from these two forces.
और जो भी बुरी बातें हैं, जो भी शैतानी बातें हैं, जो भी अन्याय, जो बातें अन्यायपूर्ण बातें हैं, वो इन्हीं दोनों बातों में से निर्माण होती है.
In a hierarchical system, those who are on the top of the system will try to keep those below down because they threaten their privilege.
तो जो वर्गीकरण वाली या वर्गीकरण करके अलग अलग करने वाली जो प्रणाली होती है उसमें जो सबसे ऊपर के स्थान पे होते हैं वो नीचे वालों को नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जो कुछ भी सुख सुविधाएं मिली हैं वो उनसे छीन जाएगी.
So you can spell it all out. You can see how it all works out. Basic from this basic defense of self comes hatred, violence, etc.
तो आप हर चीज के विषय में ये बोल के दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो बात है हर प्रकार के हिंसा के अंतर्गत कार्यरत है.
We're going to look a little bit more closely at this tomorrow, but this is broadly the picture.
तो इसकी और हम और भी नजदीक से कल देखने वाले हैं, लेकिन ये जो है इसका एक व्यापक ऐसा चित्र है.
There's one more a tactic that we have to defend our identity.
तो हमारी इस पहचान की सुरक्षा करने के लिए और एक पद्धति हमारे पास होती है.
That is when there's something that is true but inconvenient, we just don't look at it.
तो ऐसी कोई बात होती है जो सच होती है, सत्य होती है, लेकिन हमारे लिए वो असुविधा निर्माण करने वाली होती है, हमारे लिए वो इतनी अच्छी नहीं होती है, तो हम उसे एकदम नजरअंदाज कर देते हैं.
We just turn away.
और बस हम दूसरी ओर देखते हैं, हम उसका सामना नहीं करना चाहते.
Sometimes you can see that even in yourself.
कभी कभी आप इसे अपने अंदर भी देख सकते हैं.
You know that you ought to do that or ought not to do that.
तो आपको पता होता है कि आपको ये करना चाहिए या आपको ये नहीं करना चाहिए, ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए.
But it's inconvenient because it means some effort and it means you won't get what you want.
लेकिन ये आपके लिए असुविधापूर्ण होता है क्योंकि उसके लिए आपको प्रयास करने होते हैं, या वो आप कर दोगे तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी जिससे आप चाहते हो.
And so you just shut your eyes and don't look at it.
इसलिए बस आप अपनी आंखें मूंद लेते हो और आप उस चीज की ओर नहीं देखते.
And this can be quite extreme.
और ये काफी तो इस तरह से चीजों को नजरअंदाज कर देना भी मतलब आपको बहुत किसी चीज के एकदम अंतिम छोर तक लेकर जा सकता है.
And I'm going to tell you a story that you might have heard me tell before, but it's so powerful that I'm going to tell it.
तो आपने मुझे पहले भी ये कहानी बताते हुए सुना होगा, लेकिन मैं दोबारा आपको सुनाऊंगा क्योंकि ये काफी रोचक कहानी है.
A cousin of mine was a reporter for the BBC.
तो मेरा एक भाई था, वो जो है बीबीसी के लिए रिपोर्टर था, वो काम करता था.
And he had the opportunity to interview one of the leaders of the German Nazi regime.
और जर्मन का जो नाजी लोग थे सेना में, उसमें से किसी का एक बार इंटरव्यू करने का उसको मौका मिला.
And you know that the Nazis, they murdered 6 million people, that just genocide.
और आपको पता है कि नाजी ने जो है लगभग 6 लाख लोगों को ऐसे ही कत्ल कर दिया था मतलब.
And this person had been a minister in the Nazi government.
और ये जिसका इंटरव्यू होने जा रहा था वो नाजी सरकार में मंत्री था.
But he wasn't originally from that sort of Nazi background.
लेकिन उसकी जो पार्श्वभूमि थी वो नाजी नहीं थी.
So my cousin asked him, where did things go wrong morally in your life?
तो मेरा जो भाई था उसने उनको सवाल किया कि नैतिक रूप से आपके जीवन में चीजें कहां पर गलत हुई.
Well, he said he'd thought about it because he'd been in solitary confinement for 20 years. He'd thought about it quite deeply.
तो उन्होंने इस विषय में बहुत सोचा था, लगभग 20 साल का मतलब एकांत में ऐसे कैद में वो रहे थे जहां पे उनके साथ कोई नहीं था, तो उस दौर में उन्होंने बहुत गहराई से उस विषय में सोचा था.
He said that he knew precisely the moment when he went wrong.
और उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल वो क्षण मालूम है कि जहां पे उन्होंने गलती की थी.
He was brought into the government because he was an architect with a town planner.
तो उन्हें सरकार में इसीलिए लिया गया था क्योंकि जो शहर की रचना करते हैं उस रचना को करने वाले वो आर्किटेक्ट थे.
And so he was brought into his office.
तो उन्हें उनके दफ्तर में लाया गया था.
And when he came into the office, he saw that was the carpet on the floor.
और जब वो उस दफ्तर में आए थे तो उन्होंने देखा कि जमीन पर कारपेट बिछा हुआ है.
And he saw that there was a big stain on the carpet.
और उन्होंने देखा कि उस कारपेट पे एक बहुत बड़ा दाग लगा हुआ है.
And he said he knew that stain was the blood of his predecessor.
और वो कहते हैं कि वो जानते थे कि वो जो खून है उनसे पहले जो काम कर रहा था उसका है.
Who'd been murdered by Hitler because he wasn't supporting him.
और जिसका हिटलर ने सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया था क्योंकि वो उसे सहयोग नहीं दे रहा था.
And he said at that moment, in a tiny second, he knew he had a choice.
और उन्होंने कहा कि उस क्षण में मतलब क्षण के एक छोटे से हिस्से में उनके पास उनको ये पता था कि उनके पास चुनाव करने का अवसर है.
He could let himself realize what had happened and then respond in a moral way.
तो वो अपने आप को ये मौका दे सकते थे इस बात को देखने का कि क्या हुआ है, उसको वो उसकी अनुभूति कर सकते थे और फिर उसके अनुसार वो उसे प्रतिक्रिया दे सकते थे.
Or he could just pretend it wasn't there.
या फिर वो सिर्फ इस प्रकार से दिखा सकते थे कि जो कुछ हुआ है वो वहां पर हुआ ही नहीं है.
And that's what he did.
और वही उन्होंने किया.
And he said that was the moment when he went wrong.
और उन्होंने कहा कि ये वो क्षण था जहां पे उन्होंने गलत किया था.
So that's what happens to us. When we see something that threatens our identity, we just ignore it.
और यही जो बातें होती है ये हमारे साथ होती है, जब हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो हमारी पहचान को डरा देती है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं.
Let's take the biggest and most obvious example.
सबसे बड़ा और सबसे जो स्पष्ट ऐसा उदाहरण है उसको हम देखेंगे.
Death.
तो मृत्यु.
We're all going to die.
हम सभी मरने वाले हैं.
We don't know when.
हम नहीं जानते कब.
For some of us, it's getting very close.
हमें से कुछ लोगों की मौत जो है बहुत करीब है.
Those of us who are in NNBY for the second or even third time.
तो जो कुछ लोग ऐसे हैं NNBY में दूसरी या तीसरी बार आ रहे हैं.
And I'm just touching 69 and well, I can't go on forever.
और मैं जो अभी 69 साल का हूँ और मैं हमेशा ही जीवित नहीं रह सकता.
But actually, every one of you, however old you are, that's coming.
तो भले ही आप लोग मतलब अभी आपकी आयु कुछ भी क्यों ना हो सभी के लिए मौत आ रही है.
But we really don't let ourselves recognize that.
लेकिन हम कभी भी अपने आप को इस बात को स्वीकृत करने की इजाजत नहीं देते.
Because it threatens I.
क्योंकि वो हमारे मैं को डराती है.
So we carry on ignoring it.
तो इसलिए हम उसे नजरअंदाज करते रहते हैं.
And of course that comes out particularly when somebody close to us dies. You're first of all faced with your loss and then with the fact that this applies to you.
और इसीलिए जब बहुत ही करीबी किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप तुरंत पहले अपने संपर्क में आ जाते हैं कि आपने क्या खोया है. उस खालीपन के एहसास के संपर्क में आते हैं और उसके बाद इस सत्य के कि आपके साथ भी होने वाला है.
So we have these three tactics for keeping I safe.
और हमारे पास ये तीन पद्धतियां होती हैं जिसके माध्यम से हम अपने मैं को सुरक्षित रखते हैं.
Pushing away, hating what threatens.
पहला होता है कि जो भी चीज डराती है उसे आप धक्का दे देते हैं मतलब दूर करते हैं अपने से.
Holding on to what we think will give us happiness and security.
या उस चीज को पकड़ के रखना जिसके विषय में हम सोचते हैं कि हमें खुशी या सुरक्षितता देगी.
And just not looking at uncomfortable truths.
या जो भी सत्य ऐसे होते हैं जो हमारे लिए असुविधाजनक होते हैं उन्हें नजरअंदाज कर देना उनकी ओर देखना टालना.
Greed, hatred, delusion, lobh, dvesh, moha. You know from the wheel of life, those of you who know that image of the wheel of life.
तो आपको भवचक्र से ये पता होगा जिन्होंने भवचक्र का चित्र देखा होगा कि वहाँ पे लोभ द्वेष और मोह है.
There's the cock representing greed, snake representing hatred, the pig representing ignorance.
तो मुर्गा जो है वो लोभ का प्रतीक है, सांप जो है वो द्वेष का प्रतीक है और जो सुअर है वहां पर वो अज्ञान का या मोह का प्रतीक है.
And they are the three forces that keep the wheel spinning.
और ये तीन वो प्रमुख ऊर्जाएं होती है जो उस चक्र को गतिमान रखती है, उस चक्र को चलाते रहती है.
But you could almost say that this what do they call it, that the center of the wheel is the hub, but there's a felly, is it, the point on which the wheel spins.
तो वो जो चक्र का एकदम मध्य का हिस्सा होता है जिसको आरी कहते हैं, लेकिन उस आरी के अंदर भी एक बिंदु होता है जिस बिंदु के ऊपर जो है वो चक्र इस तरह से घूमते रहता है.
That is I.
और वो जो बिंदु होता है कि जिसके ऊपर वो चक्र घूमते रहता है वो मैं होता है. चक्का देखा है ना बैलगाड़ी का, बीच में लकड़ी होती है, फिर एक छोटा गोल होता है और फिर बड़ा गोल होता है, तो बीच वाली जो लकड़ी होती है वो मैं होता है.
Thank you. So, hope you're getting a bit clearer what I'm trying to talk about.
तो शायद आपको थोड़ा सा स्पष्ट हुआ होगा कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ.
Because of course what I'm saying is the Bodhisattva doesn't have all that.
क्योंकि मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बोधिसत्व में ये सारी बातें नहीं होती.
And you know, to the extent that one is a bodhisattva, one will have transcended that.
और जिस हद तक व्यक्ति मतलब बोधिसत्व होगा उस हद तक वो इन बातों के परे चला गया होगा.
And again, we take as our example Baba Saheb.
और फिर एक बार बाबा साहब को हम अपने उदाहरण के तौर पर लेते हैं.
It's certainly true that Baba Saheb could be even quite angry and quite forceful.
तो ये बहुत ही ये बात उतनी सच है कि बाबा साहब बहुत गुस्से में भी आ सकते थे और बाबा साहब बहुत ताकत से भी कार्य कर सकते.
He was a very strong person.
वो बहुत ही सशक्त ऐसे इंसान थे.
But I've never heard or read anything that suggests he was hateful.
लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा या सुना कि जिसमें से ये पता चलता होगा कि उनके भीतर द्वेष था या वो द्वेष से उन्होंने कोई कृति की होगी.
And considering what he had to put up with, it's extraordinary that he wasn't.
और जो भी उन्होंने अपने जीवन में देखा सहा था उसके मद्देनजर उसको ध्यान रखते हुए ये बात बहुत ही विलक्षण थी कि वो ऐसा कर पाए थे कि वो द्वेष से प्रतिसाद नहीं देते.
As far as one can see, he never wished anybody harm.
जैसे कि आपने देखा होगा कि वो कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की मतलब उनकी कामना नहीं होती थी.
You can see that, for instance, with his his action in relation to Gandhi's fast and the Yerravada jail.
तो येरवड़ा के जेल में जब गांधी जी ने उपवास देखा था और उस उपवास के दौरान बाबा साहब की जो कोई प्रतिक्रिया थी उसमें आप इसको देख इस बात को देख सकते हैं.
In certain sense, it would have been quite convenient for him if Gandhi had gone.
और एक तरह से देखा जाए तो अगर गांधी जी की मृत्यु हो जाती थी तो ये उनके लिए काफी सुविधाजनक था, उनके बहुत से काम आसान हो जाते.
But he couldn't do it. He couldn't be responsible for somebody else's death.
लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, वो किसी और की मृत्यु की जिम्मेदारी नहीं ले पाए, नहीं लेना
चाहिए. And when you see what he says about that, it's very moving indeed.
और अगर आप देखेंगे कि इस विषय में उन्होंने क्या कहा है तो वो आपको हिला देते हैं.
Very little sympathy for Mr. Gandhi's point of view. Didn't found him not a particularly inspiring person and so on.
तो गांधी जी के जो भी दृष्टिकोण थे उनके उसके प्रति उनके अंदर बहुत ही कम सहानुभूति थी बाबा साहब को, और वो सोचते हैं कि ये कोई भी किसी भी तरह से किसी को प्रेरित करने वाले व्यक्ति नहीं है.
Mr. Gandhi stood in the way of what he considered to be the best interests of his people.
तो उनके लोगों के लिए जो बहुत अच्छी बातें थी उनके विचार में, उन सारी बातों के राह में गांधी जी रोड़ा बनकर खड़े थे.
But he never hated the individual.
लेकिन उन्होंने कभी भी उस व्यक्ति का द्वेष नहीं किया.
He could speak quite strongly, he could oppose, but he would not hate.
वो बहुत सशक्त रूप से अपनी बात कहते थे, वो उनका विरोध करते थे लेकिन वो कभी भी द्वेष नहीं कर पाए.
And his strong speech was always principled and honest, truthful.
तो उनके जो भी सशक्त भाषण थे वो हमेशा तत्वों के आधार पर थे और वो हमेशा सच्चे होते थे, उसमें सच्चाई भरी होती.
And then as regards craving, well, we've already said nobody accused him of corruption.
और जहाँ तक तृष्णा की बात है तो हम देख चुके हैं कि कभी भी किसी ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया.
He didn't have a very big house. Rajshree is you know not a small house, but it's not a mansion.
तो आपको पता है उनके पास कोई बहुत बड़ा ऐसा घर नहीं था. राजगृह छोटा घर भी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा घर भी नहीं है जिसको बहुत आलीशान ऐसे कहा जाए.
It's not very lavish. It's just what he needed for his work.
तो बहुत ऐसे मतलब आलीशान सुख सुविधाओं से भरा ऐसा भी नहीं है लेकिन जो उनको अपने काम के लिए चाहिए था उतना और वैसा वो था.
And we know that he didn't have enough money to publish the Buddha and his Dhamma.
और हम ये भी जानते हैं कि बुद्ध और उनका धम्म इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था.
Because we know that because he wrote to Nehru asking for some government subsidy.
और हम ये इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने नेहरू को पत्र लिखा था और जो गवर्नमेंट की सरकार की जो सब्सिडी होती है अनुदान होता है उस अनुदान की उन्होंने मांग की थी.
And then, well, he wasn't one to ignore uncomfortable truths.
और वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जो ऐसे सत्यों को नकार दे जो उनके लिए असुविधाजनक हो.
He faced life very directly.
और बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने जीवन का सामना किया.
He didn't hide himself from what was happening.
और जो भी हो रहा था उससे उन्होंने अपने आप को छुपाया नहीं.
And he seems to have been also very honest about himself.
और वो अपने विषय में बहुत ही प्रामाणिक थे.
So he is an example of not being driven principally by greed, hatred, delusion.
तो वो एक ऐसे व्यक्ति है जो जिनके और हम देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि उनको चालना देने वाली जो ऊर्जाएं थी वो लोभ द्वेष या मोह की नहीं थी.
So there's this underlying identity that we are attached to.
तो यहाँ पर एक बहुत ही हमारे भीतर एक ऐसी पहचान चलती रहती है मैं कि जिसके साथ हम आसक्त होते हैं.
And that the bodhisattva has freed him or herself from.
और ये वो पहचान होती है जिससे बोधिसत्व ने अपने आप को मुक्त कर लिया होता है, फिर वो स्त्री हो या पुरुष.
At least to the extent that it no longer dominates.
कम से कम उस हद तक तो भी कि वो मैं जो है उसका नियंत्रण नहीं करता.
So the reform that needs to take place is that people become less selfish, less attached to I.
तो हमारी जो क्रांति है वो इस क्षेत्र में होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए कि लोग जो है अपने इस मैं के साथ कम से कम आसक्त हो.
They let go of their attachment to their nation, for instance, huh?
तो उदाहरण के तौर पे उनकी जो अपनी राष्ट्रीयता को लेकर आसक्ति होती है उससे वो छुटकारा पाले, उसे ढीला कर दे या छोड़ दे.
Even to community, caste or class.
तो अपनी समाज के साथ या अपने वर्ग के साथ जो अपनी पहचान से वो आसक्त होते हैं उसे वो ढीला कर दे, छोड़.
Oddly, even in a certain sense to your gender.
और बहुत हद तक तो या विशिष्ट रूप से आपके अपनी लिंग को लेकर भी जो आसक्ति होती है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, वो भी छोड़ती.
In the ordinary the course of things, I can't stop being a man.
तो एक तरह से मैं अपने आप को पुरुष होने से नहीं रोक सकता.
But I can stop being attached to being a man, if you see what I mean.
लेकिन एक तरह से पुरुष होने की जो भावना है उससे आसक्त रहना मैं कम कर सकता हूँ.
So whenever husband and wife are having a quarrel, I always identify with the husband.
तो जब भी किसी मतलब क्या बोलते हैं हस्बैंड वाइफ को? Sorry. तो जब भी कोई किसी पति पत्नी का झगड़ा होता है तो मैं अपने आप को तुरंत उस पति के साथ जोड़ने लगता हूँ, यानी उससे मुझे सहानुभूति हो जाती है.
In out of male solidarity.
तो क्योंकि वो पुरुष होता है तो मैं उसके साथ एक महसूस करता हूँ.
You know, so when anything comes up, women saying, well, this has happened, that's happened. Oh, no, you know, good now.
आज जब कोई औरत या लड़की मेरे पास आती है और मुझे बताती है कि मेरे साथ ऐसा हो, वैसा हो, वैसा हो, तो मैं उन्हें बोलता नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता.
So do you see what I mean? It's not a question of stopping being what you are. I can't stop being English in a certain sense.
तो एक तरह से आप क्या हो उससे आप वो वैसा होने से अपने आप को रोकना नहीं है, जैसे कि मैं अपने आप को अंग्रेज होने से नहीं रोक सकता.
But I can stop being attached to it and acting from that identity.
लेकिन उसके साथ आसक्त होना और फिर उसी पहचान के तहत, उसी पहचान के आधार पर अपना कार्य करते रहना, वो मैं रोक सकता हूँ, कम कर सकता हूँ.
So when India plays England, I can really appreciate the shot that gets the final six from India.
तो जब फिर इंडिया और इंग्लैंड जब खेल रहे हैं मैच, तो इंडिया में अगर आखिरी में कोई छक्का मारता है तो मैं सही में दिल से उसकी सराहना कर सकता हूँ.
When Chandrashil shouts well played, when an Englishman bowls out an Indian, then I'll know he's a bodhisattva.
और जब कोई अंग्रेज मतलब किसी भारतीय की विकेट ले लेते हैं और तब अगर चंद्रशील बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा खेला, तब मैं मानूंगा कि चंद्रशील जो है वो बोधिसत्व है.
You see what I mean?
आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ?
You can't stop being something.
कुछ होने से आप अपने आप को नहीं रोक सकते.
You can't be everything.
आप हर चीज नहीं हो सकते.
I can't be a sort of man, woman, Indian, English. I can't be all of that.
तो एक ही वक्त में स्त्री या पुरुष या अंग्रेज या भारतीय नहीं हो सकता, मैं हर चीज नहीं हो सकता.
But I can stop rigidly holding on to it.
लेकिन बहुत ही सख्ती से, बहुत ही कड़ेपन से उसको थामे रखना, पकड़े रखना मैं रोक सकता हूँ.
And I can let go of this more deep attachment to I.
और मेरी जो इस I के मैं के साथ जो गहरी आसक्ति है उसको मैं छोड़ सकता हूँ.
So there's further to go, but I've given you quite a large lump to chew on.
तो आगे जाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको बहुत बड़ा निवाला दे दिया है कि आप उसको चबा नहीं पाओगे, मतलब चबाने के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा.
And it's खट्टा मीठी.
और वो खट्टा मीठा भी है.
Because it's quite bitter when you look at the reality of it.
और जब उसकी सच्चाई की ओर आप देखते हो तो वो उतना ही कड़वा भी है.
But it's quite sweet when you look at the possibility.
लेकिन जब उसमें व्याप्त या उसमें छिपी हुई जो संभावनाएं हैं उसकी तरफ जब आप देखते हो तो वो उतना ही मीठा भी है.
And the fact is that every one of us can be more or less free of this.
और इसमें एक तथ्य ये भी है कि हम में से हर एक जो है थोड़ी बहुत मात्रा में इन सारी बातों से मुक्त हो सकता है.
And the reform that we need to undergo is a reform that leads us in the direction of being selfless.
और जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो इस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं कि जो हमें आत्मरहित होने की दिशा में आगे ले जाए, मतलब मैं से रिक्त होने की दिशा में आगे लेकर जाए.
And to be completely clear, being free of self doesn't mean just being a bit blank.
और उतना ही स्पष्ट रूप से ये भी हमें देखना है कि मैं से रिक्त होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी तरह से खाली हो, मतलब कि आप में कुछ नहीं है.
We tend to think that if we stop being attached to I, we will sort of disappear.
तो हमारी एक प्रवृत्ति होती है, हम इस तरह से सोचते हैं कि अगर मैं अपने मैं से आसक्ति के संदर्भ में सोचना बंद कर दूंगा तो मैं इस तरह से गायब हो जाऊंगा.
बाबा साहब वाज डेफिनेटली देयर.
लेकिन बाबा साहब वहां थे, ठोस रूप में थे.
इट वाज अ वेरी डेफिनेट प्रेजेंस.
और बहुत ही निश्चित ठोस ऐसे उनकी वहां पर उपस्थिति थी.
इवन दो ही वाज वेरी सेल्फलेस.
और ऐसा होते हुए भी कि वो आत्म से मैं से रिक्त थे, आत्म से रिक्त थे, आत्म से रहित थे, आत्मभाव से.
He lived a good life. He interacted with other people. He had friends, close friends, and so on.
तो वो जीते थे, वो बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करते थे, उनके बहुत सारे अच्छे दोस्त थे और ऐसी ही बहुत सारी बातें.
And of course, the Buddha is the supreme example because he was completely free from self.
और सबसे बड़ा उदाहरण बुद्ध है क्योंकि वो तो पूरी ही तरह से मुक्त थे.
But for 40 years after his enlightenment, when he rid himself of self, he wandered selflessly through India, helping everybody.
और अपने बुद्धत्व के प्राप्त करने के 40 साल बाद तक, मतलब बुद्धत्व प्राप्त करना वो क्षण था कि जब उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को मैं से मुक्त कर लिया था, तो बिना किसी स्वार्थ के वो 40 साल तक लोगों की भलाई के लिए भ्रमण करते रहे, कार्य करते रहे.
So I hope we're a bit clearer about what this reform consists in.
तो मुझे लगता है कि हम इस विषय में बहुत ही स्पष्ट हो चुके हैं कि हमारी जो क्रांति है वो कहाँ है, किस चीज में छुपी है, किस चीज में हमें क्रांति करनी है.
And I hope we're clearer about what it is to be reformed.
और मुझे लगता है कि ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है कि क्रांति होना या परिवर्तित होना इसका क्या मतलब है.
I hope we got a better idea of what that new mind is like.
और हमें एक अच्छी कल्पना आ गई है कि ये जो नया मन है, ये नया मन किस प्रकार का होता है.
I need to talk more about it, which I'll do tomorrow.
तो मुझे इस विषय में और थोड़ी सी बात करनी है जो मैं कल करूंगा.
So we can understand a bit more deeply what is meant.
ताकि हम और भी गहराई से समझ सके कि इन सारी बातों का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है.
And I also need to talk a bit more about what this selfless mind is like.
और हमें इस और भी देखना है कि ये जो आत्म से रिक्त, मैं से रिक्त मन है, ये किस प्रकार का होता है.
We need to talk about what the bodhisattva is like from the inside.
और मुझे इस और भी देखना है कि मेरे अंदर का जो बोधिसत्व है वो किस प्रकार का है.
And then of course I need to move on to what that training essentially consists in.
और फिर मुझे आगे बढ़ना है कि वैसा बनने के लिए जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण किस तरह का है, किस चीज से हमें वो मिलेगा.
But I should be very interested to see what discussion takes place.
लेकिन मुझे ये जानने में काफी रुचि है कि अब क्या चर्चा होगी.
And if there are any particular things that need greater clarity.
और क्या ऐसी कोई विशेष कल्पनाएं हैं जिसको और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है.
Really being clear about this material is crucial to being an effective Buddhist.
और एक परिणामकारक बौद्ध होने के लिए इन सारी बातों को समझना काफी महत्वपूर्ण है.
It's this that Buddhism is essentially about.
और यही वो बातें हैं जो आप कह सकते हैं कि सार रूप से बौद्ध धर्म है या निश्चित तौर पे बौद्ध धर्म है.
The essence of Buddhism is becoming free from self-attachment.
तो बौद्ध धर्म का सार ही ये है कि आत्म की आसक्ति से मुक्त होना है.
Which means becoming compassionate.
और जिसका अर्थ होता है करुणावान बनना.
So now I'll hand over to whoever's going to arrange groups and so forth, and we'll see what comes up next.
तो फिर मैं आगे का सूत्र उनकी तरफ देता हूँ कि जो ग्रुप्स बनाने वाले हैं और फिर आगे का ये करने वाले हैं चर्चाओं के लिए ग्रुप.
If the groups have anything that they think I need to make clearer, or anything they want me to explore further, then maybe they can send a message to me via Ratna Kumar.
और फिर ग्रुप को अगर ऐसा लगता है कि ये चीज है जिसके विषय में मुझे अधिक स्पष्टता चाहिए या ऐसी कोई चीज है जिसे सुभूति ने और ज्यादा विस्तार से बताना चाहिए तो फिर वो रत्न कुमार के हाथों मुझ तक संदेश भेज सकते हैं या फिर आप भारती को बता सकते हैं.
थैंक यू. नमो बुद्धाय. जय भीम. What's okay, let's have a little, yeah.
Yeah. So can like being a Buddhist also an attachment?
I'm sorry?
Being a Buddhist, like calling
ourselves
as Buddhist is also a type of attachment.
Identifying ourselves as Buddhist can
also
be a...
Oh, Pranali, you're clever. You've caught me. It can be.
तो हो सकता है.
For instance, you see, even now in Bangladesh, in Myanmar, Buddhists are persecuting Bangladeshi Muslim refugees.
तो अभी भी आप ब्रह्मदेश या म्यांमार में देख सकते हैं कि वहाँ के जो बौद्ध लोग हैं वो मैं वहाँ के म्यांमारी मुस्लिम्स को जो है वो प्रताड़ित कर रहे हैं.
So that Buddhism has become an identity that is threatened by Islam.
तो उनके लिए बौद्ध धर्म एक पहचान बन चुकी है कि जिस पहचान को इस्लाम से खतरा है.
And the same is happening in Sri Lanka too, that mosques have been blown up by Buddhist activists.
और ऐसे ही कुछ बातें जो है वो श्रीलंका में भी हो रही है कि वहाँ की मस्जिदों को ये जो बौद्ध कार्यकर्ता है मतलब जैसे अपने आतंकवादियों जैसे वो उड़ा रहे हैं मस्जिदों को.
And sometimes the Tamils, who are Hindus in Sri Lanka, were attacked by Buddhists, led by Buddhist monks.
और वहाँ के जो तमिल लोग हैं जो कि हिंदू है तो उनके ऊपर हमले होते थे और जो गुट उनके ऊपर हमले करते थे उनका नेतृत्व जो है बौद्ध भिक्षु करते थे.
So, that makes one feel somewhat ashamed of being a Buddhist, yeah?
तो इस तरह की बातें जो है फिर लज्जास्पद लगती है जब हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं तो कहने में.
So there is a form of Buddhism that is what you could call identity Buddhism.
तो एक बौद्ध धर्म का ये भी प्रकार है कि जिसको आप कह सकते हो कि बस ये पहचान के लिए बताने जितना ही मतलब वो बौद्ध धर्म है कि वो मेरी पहचान है कि मैं बौद्ध.
And then it becomes something that you greed and hatred and ignorance come into action again around.
और फिर ये वही बातें हैं कि जिस के गिर जो है लोग द्वेष और अज्ञान जो है वो कार्यरत हो जाता है.
So we must really make sure that if we do consider ourselves Buddhists, it's in the sense that we're Buddhists to get free from self-clinging.
तो इसलिए अगर हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं तो इस बारे में भी हमें स्पष्ट होना आवश्यक होता है कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम हमारी आसक्ति से मुक्ति पाना चाहते हैं.
नॉट बुद्धिज्म एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ क्लिंगिंग.
या बौद्ध धर्म हमारे लिए ऐसा नहीं है कि एक अलग जो है आसक्ति का स्वरूप है.
सो आई थिंक योर क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली पर्टिनेंट एंड समथिंग दैट वी ऑल नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन.
और इसलिए मुझे लगता है कि आपका प्रश्न वाकई में मतलब महत्वपूर्ण है ऐसा है कि जिसके ऊपर हम सबने चिंतन करना चाहिए.
To be honest, I think it is a bit common amongst Buddhists in India.
और सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बहुत ही आम है मतलब भारतीय बौद्धों के बीच भी.
It doesn't usually reach much of an extreme, but we need to be careful that our Buddhism is not an identity, but an aspiration to go beyond identity.
तो ये उतने उग्र स्वरूप में नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये ऐसा है कि हम अपनी आसक्ति से आगे जाना चाहते हैं, हम अपनी आसक्ति से मुक्ति पाना चाहते हैं.
The test really always of of whether your religion, for instance, is a merely an identity or not, is what happens when it's threatened.
तो इसको आप परीक्षण कैसे करोगे कि आपके लिए आपका धर्म केवल आपकी पहचान है या नहीं, तो आप उस क्षण को देख सकते हो या उस तरह सोच के सकते हो कि क्या होता है जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके लिए आपके धर्म के लिए खतरा है.
I remember when the big Buddhas at Bamiyan in Afghanistan were blown up by the Taliban.
तो मुझे याद है कि अफगानिस्तान में एक बहुत ही ऐसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति थी और तालिबान लोगों ने उसका विध्वंस कर दिया था, उसे उड़ा दिया था.
You must have seen photographs and they're absolutely huge, weren't they? They're carved into the cliff. They were hundreds of feet high.
तो आपने तस्वीरों में देखा होगा कि मतलब हजारों फीट का वो पहाड़ था और उस पहाड़ में उस बुद्ध के शिल्प का निर्माण किया गया था.
The Taliban believe that images are insults to God.
लेकिन तालिबान का ऐसा विश्वास है, उनका ऐसा मानना है कि इस तरह की जो मतलब प्रतिमाएं होती है वो ईश्वर का अपमान करती है.
So they blew them up.
और इसलिए उन्होंने उसका विध्वंस कर दिया, उसको उड़ा दिया.
You know, these are magnificent carvings, many centuries old.
और कई शतकों पुरानी बहुत ही अच्छी विशाल सुंदर ऐसी वो कलाकृतियां थी.
So I was phoned up by the BBC.
तो बीबीसी के लोगों ने मुझे फोन किया था.
They wanted to speak to a Buddhist.
तो वो किसी बौद्ध से बात करना चाहते थे.
So they said, you've heard this news, how do you feel about it?
तो उन्होंने कहा कि आपने ये समाचार सुना होगा, आपने ये खबर सुनी होगी, तो इस विषय में आप क्या महसूस करते हैं?
So I said, well, I feel very sad.
तो मैंने कहा कि निश्चित ही मुझे खेद है, मैं दुख महसूस करता हूँ.
These precious human objects are destroyed.
कि बहुत ही मेहनत से निर्माण की गई ये जो मानव कलाकृतियां है उसका विध्वंस हो गया है.
They don't just belong to Buddhists, they belong to all humanity.
और वो केवल बौद्धों से ताल्लुक नहीं करती थी या बौद्धों की नहीं थी, बल्कि संपूर्ण मानवता की या संपूर्ण मानव समाज की थी वो.
Then I said, well, I felt very sad that people thought that it was a good thing to do to destroy them.
और मुझे लगा कि मुझे इस बात में भी मैं दुख महसूस कर रहा हूँ कि लोगों ने ऐसे सोचा कि इसका विध्वंस कर देना कोई अच्छी बात है.
So then he said something, but don't you feel angry that your religion has been insulted?
तो फिर उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि क्या आपको इस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा है कि आपके धर्म का अपमान हुआ है?
It just never occurred to me to feel insulted.
मैंने सोचा कि मुझे तो ये ध्यान ही नहीं आया कि इस तरह से अपमान होने के लिए मुझे गुस्सा भी करना चाहिए.
So I think I said something like, well, you know, they didn't destroy the Buddha, they didn't destroy Buddhism.
तो फिर मैंने ऐसे ही उनको कह दिया कि देखो, उन्होंने बुद्ध को तो नष्ट नहीं कर दिया है, बुद्ध का तो विध्वंस नहीं किया या बौद्ध धर्म का तो विध्वंस नहीं कर दिया है.
So on that occasion, I passed the test.
तो उस अवसर पे जो मतलब मेरी जो जांच हो रही थी या जो मेरी परीक्षा हो रही थी उसमें मैं पास हो गया, सफल हो गया.
It's quite a good test. How do you feel when that happens? You're going to feel something, but is it an ego reaction or more of a human reaction?
तो ये एक अपनी परीक्षा लेने का अच्छा तरीका है कि ऐसे अवसरों पे आप किस तरह से महसूस करते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी पहचान के लिए खतरा है. अगर वो आपकी पहचान में अहंकार है या उस चीज से आसक्त होने की भावना नहीं है तो वो अलग है.
Now I think we better stop because actually my brain is melting and
okay,
Bartis is
okay, yes.
Thank you.